और जितना पानी जैसा भी भगवान को नहीं चाहते हैं तो नहीं मिलेंगे भगवान, ये समझ रखो। पानी के बिना कदाचित हम बच सकते हैं, किंतु बिना भगवान के हम नहीं बच सकते भाई, याद रखो। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीना परादलक्ष क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणा। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधेतम नैनाम। अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं, मेरी इच्छा थी कि 10-10 मिनट सभी बोलते, 5-7 आदमी, और अंत में मैं भी आध घंटा बोलता। तो अभी तो 8 बज गया, बहुत विलम्ब हो गया, 7 बजे से आरंभ हो जाना चाहिए था। तो अभी मैं अकेले भी 10 मिनट भी बोलूं तो हो जाएगा, करीब 8:30-9 बज जाएगा। इसलिए जैसा चाहता था अभी माइक वो भी बंद कर दीजिए। बहुत ही संक्षेप में 2-4 बातें बतला रहा हूं, क्योंकि अभी 8 बज गए हैं, आप लोग भी दूर दूर से आए हैं और मुझे भी समय का पाबंद रहना है, नहीं तो शरीर लड़खड़ा जाएगा। पहली बात तो ये कि मैं विदेशों में जहाँ जहाँ गया, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी भागवत की बातों को, गीता की बातों को लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ में सुना। यहाँ के लोगों को जो उत्सुकता नहीं है, है यहाँ के लोगों को, थाई भी है, किंतु वहाँ के एकदम नवीन लोग जो मांस मछली अंडे दिन रात स्त्री पुरुष के अपने कामों में लगे हुए हैं, और वो लोग हमारे भाषणों को सुनने के लिए कहीं भी 300 से कम नहीं आदमी हुए, और इतने सुनने के लिए लालायित कि वो प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया। हरि कथा सुन करके, भागवत को सुन करके यदि कोई प्रश्न हृदय में उदित नहीं हुआ तो इसका मतलब ये वो इस चीज को ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं करना चाहता, जब कुछ प्रश्न हृदय में जगेंगे। सारा भागवत प्रश्नों पर आधारित है, सारा गीता प्रश्नों पर आधारित है। अर्जुन पूछते जा रहे हैं और कृष्ण उसका उत्तर देते जा रहे हैं, इससे मालूम होता है जो श्रवण कर रहा है उसके अंदर में उत्कंठा है कि नहीं जानने की। और यदि सुन रहे हैं, सुनना है, सुन रहे हैं, कैसे इस चीज को अपने हृदय में ले आए और जीवन में इसको ढाल करके सुखी हुए, इसकी अनुभूति हो, इसके लिए तो प्रश्न जरूर आएगा, कैसे इसको जीवन में आचरण करें। पानी पीना है तो पूछना पड़ेगा ना, ये कौन सा पानी पीऊं, कैसे पानी पीऊं, छना हुआ पानी पीऊं या ऐसे ही पानी पी लूं। यमुना का पानी बहुत ही सुनते हैं शास्त्रों में, इतनी महिमा है, यमुना का पानी पीना चाहिए। और गए और यमुना का पानी पी लिया तो दूसरे दिन बीमार हो जाएंगे, पूछना पड़ेगा ना। यमुना का पानी सच्चिदानंद है, ये बात तो ठीक है, किंतु उसको समझ बूझ करके लेना पड़ेगा। उसी तरह से कोई प्रश्न होगा, जानने की उत्कंठा हो, मैं इसको जीवन में कैसे आचरण करूं, उतारूं। उसके भी दो रूप होते हैं, एक बाह्यतः और एक होता है आभ्यांतरिक या आंतरिक। एक होता है ऊपरी और एक होता है भीतरी। साधारण लोगों के लिए बाहरी विचार अधिक होता है, जो प्रवेश करने लगते हैं उनके लिए भीतरी विचार की जरूरत है। जब पहले आदमी आता है इस इधर की तरफ में, जिसकी पूर्व जन्म की भी कोई सुकृति नहीं है, तो वो धर्म के बाहरी स्वरूप पर अधिक विचार करता है। क्या बाहरी स्वरूप? जैसे यज्ञ हो रहा है तो भाई सुंदर सुंदर लाइन चाहिए, इधर तो रुचि है, फूल ले आओ बहुत रुचि है, घी ले आओ, घी ले आने में बड़ी रुचि है, कितना महाराज चाहिए, तो 15-20 किलो चाहिए, एक मन चाहिए घी, बहुत यज्ञ विशाल होगा, हाँ बहुत विशाल होगा, तो मैं तो सोच रहा कि 40 किलो घी लगना चाहिए, 2 मन लगना चाहिए, ठीक है करो, 1.25 मन लकड़ी चाहिए, आम की, गुलर की, पीपल की इत्यादि की चाहिए, पवित्र, और बहुत बड़ा भारी मंडप हो और उसमें कीर्तन की मंडली हो, इस सब की सारी बिजली का भी उसमें माइक इत्यादि हो, ये सब चीज क्या है, उसमें इसकी बड़ी रुचि है, क्योंकि ये पैसे से और शरीर के परिश्रम से हो जाएगा, किंतु इसमें प्रेम की जरूरत है, प्रेम उसके भीतर की चीज है, ये सब प्रेम की वृद्धि के लिए, भगवान के प्रति प्रेम हो, इसके लिए जो किया रहा है इसमें वो सो जाएगा, जैसे ये तो कुछ नहीं हो रहा है और उसमें वो सो जाएगा, और ये बाहरी कामों में बहुत तेज रहेगा। आपको 1 मन की जरूरत है जी, जी मैं 5 मन लाऊंगा, ठीक, क्योंकि ये पैसे से हो जाएगा, तो इन सब चीजों को तो वो कर सकता है, किंतु जहां भीतरी स्वरूप प्रेम का है, जिसे यथार्थ कल्याण होगा, जब तक कि पूर्व जन्म की या इस जन्म की सुकृति या संस्कार न हो, तो वो ये संभव पर नहीं है। इसलिए बाहर के लोग जितने या साधारण लोग हैं, वो बाहरी आडंबर की तरफ में पहले झुकते हैं, उनको ये चीज चाहिए, भाई ये ऐसा प्लान कीजिए, हमारे बहुत से प्लान हैं और उसमें एक एक आदमी कम से 1-1 लाख रुपया, 1-1 लाख नहीं हो तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो 1-1 लाख, और नहीं तो 50, 10 से कम नहीं, 10 कितने कितने देंगे तो सबने हाथ उठा दिया, ठीक है। और ये प्लान बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को कष्ट है, ये चीज नहीं है। एक नाट्य मंदिर होना चाहिए जिसमें कि इतने लोग बैठ सके और सारी व्यवस्था हो सके, अधिक नहीं 50 लाख रुपए का ये प्लान है, बहुत अच्छा, सर्वसम्मति से हम लोगों ने स्वीकार किया और इसको करेंगे, तड़फड़ करके लग गए। किंतु मैं कहूंगा भाई मेरे बातों को सुनो, कृष्ण से जैसे अनुराग हो ऐसा काम करो, उसके लिए चिंतन करना है, स्मरण करना है, भगवान का नाम पुकारना है, कैसे पुकारना है, पद्धति के अनुसार में करना है, जिससे हृदय में प्रेम बढ़े, शरीर में जो अनर्थ हैं ये दूर किया जाए। शरीर में बहुत प्रकार के अनर्थ हैं, सबसे बड़ा अनर्थ यह है कि हमने इस शरीर को मैंने मैं मान लिया, सबसे पहला। और शरीर की आकांक्षाओं को पूरा करने में दिन रात लगे हुए हैं। आत्मा की आकांक्षा हमारी कोई जगती नहीं, उसमें हम लोग सोए बैठे हैं। जो सद्गुरु होंगे, जो सद्वैष्णव होंगे, इस पर अधिक ध्यान देते हैं। पश्चात देश में वहां गया मिलने के लिए, रिपोर्टर सब लोग आए, पूछा आपका उद्देश्य क्या है। तो उनसे मैं अपना उद्देश्य क्या कहूं, तो साधारण रूप में कहा कि भारतीय वैदिक संस्कृति का प्रचार और भारतीय ज्ञान का प्रचार। वाह वाह, बहुत सुंदर है, बहुत। और जब एक निष्ठा की बात कर करके उनको साधारण श्रद्धा में लाना चाहेंगे, नहीं समझ सके, तो उन लोगों के लिए वही बहुत है। स्वामी जी गए, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कहा जैसे एक फॉर्म की जरूरत है जिसमें हजार गायें रहें, बहुत अच्छा है, ठीक। 50 देश वाले हैं, उनको राधा कृष्ण की कथा सुनाएंगे, कहा अरे ये तो बढ़िया चीज है, ये तो हम लोग रोज करते हैं, रोज छोड़ते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की बात नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे ये बेकार बोगस बात है, स्त्री प्रेम का ये बहुत गंदा, ये घिनौना व्यापार है। उनको इस काम में धीरे धीरे लगाते लगाते जब उनके संस्कार होंगे तो ये लोग सुनेंगे। तो वहां पर यही करना पड़ता है। आप लोगों के कुछ पूर्व जन्म के भी संस्कार हैं, ये जन्म के भी संस्कार हैं, और भारतीय रक्तों में कुछ पूर्वजों का कुछ रक्त है, इसलिए साधारण रूप में ये चीजें हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा जन्म है तो मरण जरूर है। हम जानते हैं कि कुछ सांस लेकर के नहीं जाएंगे, हम आत्मा ये भी समझते हैं। किंतु थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि हमने समझ कहीं कहीं सुन रखा, 10 तरह के लोग आते हैं, किसी ने कह दिया कि भाई तुम ही भगवान हो, आत्मा ही परमात्मा है, यह कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कर्म ही जीवन है, ये नहीं जानते हैं कि कर्म किसको कहते हैं। कर्म ही जीवन है, इस जीवन में यदि कुछ सत्य है तो कर्म सत्य है। कोई कहेंगे जीवात्मा ही ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म है। कोई कुछ कहता है ध्यान करो, किसका ध्यान करो, वो कुछ का नहीं, ध्यान करो बस, योग करो। क्या योग करो, अरे एक है और एक कोई दूसरी चीज, 10-5 चीज आएगी तब तो योग करेंगे, ऐसे ही योग हो जाएगा। योग करने के लिए 2 वस्तुएं चाहिए, 3, 4, 5, 10, 20, 50 चाहिए, तब उसका योग होता है। एक और एक 2 होता है, जो कि वस्तु चाहिए, क्या चीज है वो, वही नहीं समझते। कहते हैं कि निराकार में हम भी निराकार हैं, उसमें जो कर दो। कहने कौन जो करने वाला है, और किसमें जो करेगा, क्या करेगा। पाश्चात्य देशों में भी ये सब भारतीय जो चिंता स्रोत हैं बेकार की, ये सब उधर में भी हो रही है। आप लोगों का सौभाग्य है जो भक्ति की तरफ में है। इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी को बतलाया, भागवत गीता रामायण ये कभी पुराने नहीं होते, वेद पुराना नहीं होता है। क्यों, हमारी पुस्तक ये पुरानी नहीं हो गई है, देखिए कैसी गंदी हो गई, पुरानी पुरानी है ना, और कुछ दिनों के बाद में ये फट भी जाएगी। तो भागवत फट गई ना, गीता फट गई। गीता है क्या चीज, संदेश, कृष्ण का वह संदेश, अमर संदेश है, वो गीता है। कागज नहीं है, कागज तो अभी जल जाएगा, किंतु गीता जल गई। कृष्ण के अंदर में जो तत्व ज्ञान है जो अर्जुन को दिया, वो जलने वाली चीज नहीं है। वैसे प्रेम एक चीज है, वो जलने वाली नहीं है। समस्त धर्मों का सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, स्मृतियों का सार, और आधुनिक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबका सार है प्रेम। यदि प्रेम हृदय में नहीं है तो जीवन सुना है। अभी हम लोगों के हृदय में प्रेम तो है, उसे भी भूल गए हैं हम। हम हैं तो सिंह है किंतु मेमना बन गए हैं। एक बंदर था, एक कोई लड़का था, बचपन में उसके माता पिता जंगल में गए और जंगल में जब गए तो जंगली जानवरों ने खदेड़ा, उसकी मैया अपने बेटे को भूल गई लेना और वो भागी प्राण बचाने के लिए। बच्चे पर अधिक चेष्टा नहीं करते, जब मर मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। बच्चों को बंदरों ने ले लिया और बंदर अपने दल में रख करके उसका पालन पोषण करने लग गए। धीरे धीरे वो भी एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर छलांग करना सीख लिया, उसके नख बड़े हो गए, केस बड़े हो गए और एकदम बंदर जैसा ही बन गया। एक दिन कोई शिकारी गया, देखा जैसे ये तो आदमी का बच्चा मालूम होता है। बड़ी मुश्किल से अपने बंदूकों से जानवरों को भगाया और उसको किसी बंदरों को और उसको किसी प्रकार से पकड़ लिया। तीन चार आदमी से पकड़ लिए, वो तो उसको बंदर जैसा खूं खूं करता और उस पर आक्रमण करने की चेष्टा करता, वो किसी प्रकार से बच निकला और उस बच्चे को पकड़ लिया। घर में ले आकर उसने नाखून काट करके, केस काट करके सुंदर रूप से बनाकर बहुत सुंदर उसको कपड़े पहना हुआ जबरदस्ती, और वो पहने नहीं, जबरदस्ती पहना करके धीरे 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 उसको उस रूप में लाया। कहा देखो तुम मनुष्य का बच्चा है, तुम बंदर का बच्चा नहीं। ऐसे हम लोग भगवान के अंश हैं, सदा सुखी हैं, आनंदमय हैं। जीवात्मा इस संसार से ऊपर की चीज है। परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतञ्चाभिपपद्यते अनर्थोपशमम साक्षात् भक्ति योगम अधोक्रियजे चक्रे शाश्वत संहिता जस्या वैसूर्यमाणायाम कृष्णे परम। हम ये मनुष्य शरीर जो देख रहे हैं ये नहीं है, स्त्री का स्वरूप नहीं है। स्त्री अपने पति को देख करके भय 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 कर रही है, वो समझती कि मैं दुबला अबला जाती हूँ। पुरुष समझता है कि मैं उसका नौकर हूँ। कोई कुछ समझ रहे हैं, कोई कुछ समझ रहे हैं। आइए अभी आगे आ जाइए, तस्वीर रखिए यहाँ, यहीं आ जाइए निकट में। तो समझिए ये विश्व में ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, केवल भारतवर्ष की ये अपनी संपत्ति है। हम कोई अपने को दुखी मान करके और बिल बिल आ रहा है, किसी को किसी कोई संपत्ति मिल गई और वो किस प्रकार से नष्ट हो गई वो बिल बिल आ रहा है। किसी के बड़े भाई ने छोटे भाई की संपत्ति ले ली वो बिल बिल आ रहा है। किसी ने अपनी स्त्री को प्रत्याग कर दिया वो बिल बिल आ रही, और कहीं स्त्री ने ही पति को धक्का दे दिया वो बिल बिल आ रहा। कोई संसार में सुखी नहीं है, ये संसार सुखी का ही नहीं है, सभी दुखी हैं। यदि सब प्रकार से कोई सुखी भी हो तो बुढ़ापा तो आएगी, इसका क्या उपाय है? है कोई उपाय? विश्व के समस्त वैज्ञानिक और डॉक्टर मिल करके एक आदमी को बुढ़ापा होने से रोकते हैं। आंखें कमजोर होंगी, एक दिन जर्जर शरीर हो जाएगा, एक दिन अपने नहीं उठ सकेंगे। चार आदमी मिल करके डोली को उठा करके जलाएंगे बस। इसलिए अभी से सोचना चाहिए, इसमें आत्मा अजर अमर नित्य है। इसलिए कहते हैं भयं दित्याग अभिनिवेशतस्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्योष। सुखदेव गोस्वामी जी व्यास जी की बातों को कह रहे हैं। व्यास जी समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि जीवों को दुख कैसे होता है, उसका बंधन कैसे माया में होता है, उसका मोक्ष कैसे होता है, वो जानने वाले हैं, साधारण आदमी नहीं है, भगवान के ही अंश हैं। इसलिए अपने समाधि में जिन चीजों को उन्होंने देखा अनुभव किया उसी को वो व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। भयं परिचित तो कह रहे हैं, डर तो डरता क्यों है? डर रहा है, जो सांप आएगा तुम्हें काट देगा, सांप तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। सांप किसको स्पर्श कर सकता है? आप किसको स्पर्श करेगी? हर मान श्याम इस सबको जो कि फाइव एलिमेंट्स के द्वारा बना हुआ है, स्थित जल पावक गगन संज्ञा, इन चीजों के द्वारा बना है, उसको आप छू सकती है। अरे तुम सुखी संतानों, सुख कौन है? कृष्ण ही स्वयं आनंद स्वरूप है, उनकी तुम संतान है। तुम अपने को भूल करके कोई स्त्री, कोई दुखी पुरुष, कोई संसार का भुला भटका, सबका मारा हुआ बेचारा बन रहा, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं। भयं जीति अविनाश, भगवान को भूलने से ये सारी विपत्तियों की जड़ बनी हुई है। अब भगवान को कैसे स्मरण करें? इसीलिए भगवान कभी आते हैं, कभी संतों को भेजते हैं, कहते हैं कि इनका तुम इनकी सहायता करो, नहीं तो कभी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। उसमें से लाखों लोगों में से दो एक आदमी उससे आकर्षित होंगे, सभी नहीं आकर्षित होंगे। आप लोग दिल्ली में से छटे हुए हैं जो शुद्ध भगवान की भक्ति तरफ में आ रहे हैं, सब दिल्ली वाले नहीं आएंगे, उनको समय भी नहीं है, उनको तो लुफ्त चाहिए। लुफ्त माने क्या? मजा चाहिए। ऐसी कोई रंगीली कोई कथा सुनाए प्रवचन में और कहे देखो भाई स्त्री पुत्र परिवार के साथ में सुख से रहो और जैसे तुमको आराम मिल सके, सुख मिले वही करो, यदि मदिरा पीने से ही तुमको सुख होता है तो वो भी करो, जैसे भी सुख हो। वो सब सुनने के लिए लाखों आदमी आएंगे, शुद्ध बातें सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं भयं द्वितीयाद अविनिवेश, भगवान ही एकमात्र विषय हमारे हैं, उनके हम अंश हैं, वो प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। जब से उनसे हम भूले हैं तभी से हमारी ये दुर्दशा हो रही है, जब से हमारा जन्म हुआ, जब से विश्व की स्थिति, और तभी से हमें ये दुख है। जब दुख पाते हैं तो कहते हैं कि अब नहीं करेंगे ऐसा। जैसे स्कूल में बहुत गंदे लड़के होते हैं तो मास्टर ने पकड़ लिया, कहा फिर करेगा तो अब नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं, अब फिर छोड़ दिया तो हंसता हुआ जाएगा जी अब तो फिर करेंगे। ऐसे ही हम जब माता के गर्भ में बहुत कष्ट पाते हैं, सोचते हैं प्रभु से प्रार्थना, प्रभु अब हम नहीं करेंगे, अब भजन करेंगे तुम्हारा। फिर मृत्यु के समय में जब दुख होता है तब ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, या संसार में जब विपत्ति में ऐसा पड़ जाते हैं जबकि कोई सहारा किसी का नहीं होता, दुख की अनुभूति होती है, कुछ मत हे प्रभु हमारे ऊपर। तो ये सीखते हैं दो प्रकार से, एक तो यदि ठोकर स्वयं लगे और दूसरा पूर्व जन्म का संस्कार हो और साधुओं का संग हो तो ये सहज रूप में समझा जा सकता है। ठोकर कैसे? जैसे ठोकर की बात बतलाता हूं, कैसे ठोकर लगती है। कौरवों पांडवों का महायुद्ध हुआ, उस युद्ध में धृतराष्ट्र के सैकड़ों 100 लड़के थे वो मारे गए, नाती भी मारे गए। पांडव भी धृतराष्ट्र के ही हैं, पांडवों के भी लड़के मारे गए, अभिमन्यु मारा गया, उनके 5 पुत्र थे वो भी मारे गए, उनके मामा काका ताऊ चाचा भीष्म पितामह इत्यादि जितने हैं गुरु सब उसमें मारे गए। धृतराष्ट्र की आशा वहीं की धरी रह गई। प्रतिदिन वो सुन रहा है, देख रहा है, उसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं ना किसमें वो टीवी या क्या होता है उसमें देखते हैं, घर में बैठे हुए देख रहे हैं। लंदन में क्रिकेट हो रहा है, अभी लंका में शायद कोई क्रिकेट होने जा रहा है, सरजाह में होगा, तो पहले से सब ठीक रहता है, अब अपने टीवी में घर में बैठे हुए देख रहे हैं। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठा हुआ और संजय उनको बतला रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको बतला रहे हैं। आज भीष्म पितामह मारे गए, आज शय्या पर चले गए, और दुर्योधन के 10 भाई मारे गए। फिर देखा दुर्योधन के करीब करीब और 25 भाई मारे गए। भीम बड़ा खुखार, भीम जिसको पकड़ता है उसको एकदम तोड़ मड़ करके उसका रक्त पानी सब कुछ एक कर देता है। भीम ने द्रोणाचार्य को कर्ण का वध किया और लाखों सैनिक मर गए दोनों तरफ के। अभिमन्यु किस तरह से मारा गया ये सब सुन रहे हैं, हृदय उनका एकदम तक ये हो रहा है, व्याकुल से हो रहे हैं, है अब क्या होगा, अब क्या होगा। अंतिम दिन 18वें दिन सुना जो दुर्योधन भी मारा गया। अब घर में दिया बत्ती देने वाला, संस्कार करने वाला भी कोई न रह गया। पांडवों के तरफ में 5 पांडव बचे हुए हैं और कृष्ण बचे हैं, और उधर में उनका कोई नहीं बचा, 3 सहायक थे वो केवल बचे हैं। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा 3 बचे और बाकी सब लोग मारे। 11 अक्षौणी और 7, कितने लख लाख आदमी वहां सब भरी, कोई भी नहीं बचा साक्षी देने के लिए भी। युद्ध के बाद में कृष्ण के सलाह से धृतराष्ट्र को गए ये लोग, कहे जैसे अब पिताजी, अब साहू जी, अब चलिए हम लोगों के पास। गंधारी को भी चरण में गिरे ये लोग और उसको बड़ी कष्ट सुन करके अपने पास में ले आए। हस्तिनापुर का जो राजभवन था अब इनके दखल में आ गया। सारा भवन सुना, कुंती जी हैं, इनको कहा पिताजी आप यहीं पर रहिए, हम आप लोगों को खदेड़ेंगे नहीं, आपकी सेवा करेंगे। विशेष करके भीम जिन्होंने उसका संहार किया उसके पुत्रों का, वो आकर के बूढ़े को प्रणाम करने लगा और क्षमा मांग करके मांगने लगा। धृतराष्ट्र ने कहा अब जैसा जो हो गया, मैं भीम से केवल मिलना चाहता हूं। भीम से मिलने के लिए कृष्ण ने कहा जी खबरदार भाई मत मिलना, ठहर जाओ, एक लोहे की मूर्ति बनाओ और उसको उसके साथ में मिलाओ। लोहे की मूर्ति बनाई गई वज्र जैसी, और जब मिलने के लिए दिया गया तो उसने उसको सत्तू जैसा पीस दिया। धृतराष्ट्र ने उस लोहे की मूर्ति, इतना उसको बल था, अंधा था ना, बहुत बल था। और इसके बाद में 5 पांडव लोग जानबूझ करके कुछ रोने लगे। अब उसने कहा जैसे एक बचा हुआ भीम था उसको भी मैंने मार डाला, अब अनुताप उसको आया, अब रोने लगा। रोने पर 5 पांडव लोग, कृष्ण ने कहा जब भीम बचे हैं, अब संतुष्ट हुआ, उनके साथ में गया। भीम उनको कुत्ते की तरह में रोटी का टुकड़ा दे रहा है, दे रहा मैंने रोटी वैसे वैसे ही दे रहा, और उसी तरह से घर में है, नहीं सोच पा रहा कि मैं क्या करूं नहीं करूं। इतने में विदुर जी आए, सिद्धर को देख करके पांडवों ने बड़ा आदर किया, बहुत आदर किया, जैसे उनके निकले हुए प्राण एकदम लौट आए। बहुत आदर किया, उनका चरण धोया। आज भगवान की बड़ी कृपा है, संत मिलने से ही समझो कि अब कल्याण हो गया। हम लोग बड़े दुखी थे, उनके साथ में बातचीत किया, विदुर ने सब सुना, सुन करके उनको सांत्वना दी। जब रात हुई तो जहां धृतराष्ट्र बैठे थे और कुंती और गंधारी, तीनों के एकांत भवन में गए 12 बजे के बाद में। बोले भाई तू कुत्ता बना हुआ यहां पर बैठा है, भीम तुमको जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों को ध्वंस कर दिया, जिसको तुमने 20 दिलवाया, उनको वनवास दिलवाया, उनका राज्य लेने के लिए तुमने क्या नहीं किए, तुम यथार्थ में तुम्हारी बुद्धि अंधी है, तुम केवल हाथ आंख नहीं है, अंधा नहीं है, किस चीज का अंधा, अकल का भी तुम अंधा है, इसलिए तुम्हारा समस्त अनर्थ कराए, तुम्हारे सब लड़के मारे गए, नाती मर गए, पोते मर गए, कोई अब वंश में बचा नहीं रहा, अब किस लिए तू जीवित है। धृतराष्ट्र बोले भैया मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं अंधा, अरे अंधा जो विश्व का पालन पोषण कर सकता है, तेरा पालन पोषण नहीं कर सकता, जरूर करेगा, फिर मैं क्या करूं, अभी घर से निकल जाओ, निकल करके भगवान का भजन कर, यदि कल्याण चाहता है, अपने बेटों का कल्याण चाहता है, अपने पोतों का कल्याण चाहता है, जो मारे गए हैं, जो स्त्रियां विधवा हो गई हैं, जो कि ये सब ऐसे दुख भोग रहे हैं, उन सब के लिए तुम जाकर के भजन करो। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ भी पूछ रहा है, इतने लोगों का सर्वनाश करा है। अरे आत्मा अजरमर है, वो अंधी नहीं होती, आंख से अंधी हो सकती है कोई, किंतु आत्मा तो अंधी नहीं होती। अच्छा तो एक बात करो, हमारे साथ में चलो। तो ठीक है, गंधारी बोली जी मैं भी चलूंगी, कुंती बोली जी मैं भी चलूंगी, अब उसको जरूरत नहीं। तीनों निकल गए, हरिद्वार में गए, कुंती भी साथ में गई, हरिद्वार में गए। पांचों पांडव भी आए मनाने के लिए, नहीं लौटी है कोई। इसके बाद हरिद्वार में जाकर के गंगा का स्नान किया, ऋषि के इसके ऊपर में चले गए गभीर वन में, और उनको मंत्र दिया, और मंत्र देने के बाद में कहा जैसे अब आप लोग यहाँ रहिए, अब मैं अपने भजन स्थली में जा रहा हूँ, मैं या तो जाऊँगा ऊपर में बद्री नारायण, या मैं लौट करके वृंदावन में जाऊँगा, और तुम लोग यहाँ पर भजन करो। मेरे भाई किसका बच्चा है, चल रहा है, थोड़ा सा है, अब सुन लीजिए। फिर कहाँ तक कहा, छह महीने हो गए, आप कोई चिंता नहीं, भगवान का नाम करते 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 कृष्ण की लीलाओं का चिंतन अब करने लग गए। तीनों धीरे कुंती तो इस विषय में प्रवीण थी। कुछ दिनों के बाद में जंगल में भयानक आग लगी, पेड़ों में पेड़ घिस करके आग लग जाती है। ऐसी भयंकर आग लगी कि चारों तरफ में आग फैल गई, बचने का कोई रास्ता नहीं। लोगों ने आकर के कहा जी चलो भाग चलें, फिर सास ने कहा आप भाग करके कहाँ जाएंगे, भागने की जरूरत नहीं है, बहुत भाग लिया मैं, अब नहीं भागूंगा। पर चित्त को अपने हृदय से निकाल करके मस्तिष्क में लाए, मस्तिष्क में लेकर के कृष्ण के चरणों में लगा दिया, और उसी प्रकार से गंधारी और कुंती जी ने किया, और चुपचाप बैठ गए, और उनकी आत्मा शरीर से निकाल दिया, मन से निकाल दिया, भगवान के चरणों में लगा। अब सूखे शरीर को आग ने एक सेकंड के अंदर में दग्ध कर दिया, बस समाप्त हो गया। चित्त भगवान में लगाना, इसलिए उनका जन्म मरण से अतीत हो गए भगवान में लगने के कारण, और वैकुंठ धाम की गति हुई। तो एक तो ये हुआ धक्का लगना, टक्कर से संसार के दुखों को से जब हम तंग आ जाते हैं, कोई उपाय नहीं होता है, तो भगवान की याद आती है, उस समय किसी अनुभवी गुरु के पास में जाते हैं। बहुत से लोग जिनके पूर्व संस्कार नहीं है, वो जैसे तैसे गंदे लोगों के पास में पहुंच जाते हैं, और उनका यदि कुछ पैसा है तो गुरु जी ऐंठ लेते हैं, और इसके बाद में उसे निचोड़ करके छोड़ देते हैं, बस यही उनका गुरुत्व है। आ रहा है समझ में? और जो सतगुरु हैं वो कहेंगे ये तुम्हारे ये सब जगत की चीजों से हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है, तुम अपना हृदय हमारे पास में लाओ, हम तुम्हारे हृदय में भर देंगे तत्व ज्ञान प्रेम भर देंगे, और यदि तुमने थोड़ा सा भी आचरण किया तो तुम्हारा जीवन सुखीमय हो जाएगा। इसे कहते भयं द्वितीयाद अभिनेशतस्यात ईशात अपि तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायातो अबुद भजेत संग भक्तई के जीशांग गुरु देवता। तो वो कुछ ठोकर पा गया है या पूर्व जन्म के संस्कार से, अब वो गुरु की बात सुनेगा, गुरु को देवता आत्मा, आत्मा का गुरु सुहृद मानता है। सुहृद माने क्या, मित्र में जो सच्चा मित्र है, जो हमारी सब प्रकार से भलाई चाहता है, उसको कहते हैं सुहृद। माता पिता भी सुहृद की श्रेणी में आ सकते हैं ना? गुरु जैसा और हमारा कोई कल्याणकारी नहीं है, वो हमारा संसार का कोई भी चीज नहीं चाहता। जो संसारी कोई चीज चाहते हैं हमारे गुरु, समझो जी ये शुद्ध गुरु नहीं है, यही पर शुद्ध और अशुद्ध गुरु का पहचान है। वॉट यू वॉन्ट टू टेल समथिंग लाइक दिस, तो गुरु ये चाहते हैं, संसार का कोई भी पदार्थ यदि चाहते हैं तो हमारी श्रेणी में आ जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारी किसी चीज को लेकर के भगवान को अर्पित करके उसकी स्वीकृति करा दें, यहां तक तो ठीक है। हमारी एनर्जी को भगवान की तरफ में लगा दें, किंतु अपने जहां भोग में लाएंगे तो समझो जैसे वो शुद्ध गुरुत्व नहीं है। शास्त्रों में प्रवीण हो, भगवान की अनुभूति से संपन्न हो और दूसरों को भी उस आत्म अनुभूति को संचरित कर सकते हो, उसे प्रभावित कर सकते हो, जिससे कि आत्मा अपने आप प्रसन्न रहेगी। भगवान का भजन कर रहे हैं और आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को एकांतिक चित्त से उनका भजन करेंगे, गुरु को अपना सुहृद और बंधु, परम बंधु मान करके चलेंगे और उनके उपदेशों को यदि ग्रहण करेंगे तो सहज रूप में भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को कहीं नहीं दूर जाना है खोजने के लिए, वो तो सर्वत्र हैं। आग कहां नहीं है, सब जगह है। केवल साधन की जरूरत है ना, मैचिस जलाने की जरूरत है। ऐसे भगवान सर्वत्र हैं, हमारे सबके हृदय में भी हैं। यदि प्रेम से ये कहा जाए एकांत से, हे प्रभु आप मेरे हैं, संसार में अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपकी हूँ, आपका हूँ, बस इतने कहने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाए। किंतु ये अंतर की आवाज़ होनी चाहिए। भगवान को खोजने कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है भाई। एक कोई साधक था, वो खोज रहा था, खोजते खोजते जगत में कहीं गया, कोई भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो वो कैसे है, एक गोभी का पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, तो उसको हटाते जाओ, हटाते 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 गोभी भी कोई चीज मिलेगी कि पत्ता ही गोभी है। तो भगवान को ढूंढते 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 ये असत है, ये असत है, ये असत है, ये असत है, ये कहते हुए चारों तरफ देखा, भगवान उसको कहीं नहीं मिलेगा। ये संसार असत्य है। जैसे बुद्ध देव, गौतम बुद्ध देव, संसार में कहीं उनको भगवान नहीं मिले, कभी उन्होंने कहा जी ये सब झूठा है, जीरो जगत है, क्योंकि किसी का शरणागत नहीं हुए, अनुभव गुरु के, भगवान को शरणागत नहीं हुए। इसलिए उसका प्रत्येक पत्ता ही गोभी है। उससे संसार में ये शिक्षा के लिए है, जहां से हम आरंभ करते हैं वहीं से देखो भगवान को, भगवान का प्रेम देखो, प्रेम लाने की चेष्टा करो भगवान के प्रति। ये सब शिक्षागार है। इस तरह से धीरे धीरे भगवान का नाम करते हुए आगे हम बढ़े। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम अव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति, और दूसरी कोई गति नहीं है भाई। कैन यू एक्सप्लेन समथिंग विच यू सॉ इन माई प्रीचिंग देयर ए लिटल वेस्ट, यू कैन स्टैंड अप एंड टेल व्हाट यू सॉ एंड रियलाइज देयर। बहुत विद्वान है, मैं भाषण देता था साथ साथ में ये कंपोज कर करके एकदम टाइप करके पुस्तक छप जाती थी, ऐसी ये बहुत योग्य लड़की है। और कंप्यूटर में तो मास्टर है, अब बहुत मेधावी, बहुत तेज है, ये सब लोग हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, स्वामी जी की पकी हुई खीर हमको मिली, हमको खीर नहीं बनाना पड़ा, खीर स्वामी जी ने बना करके रख दिया, जैसे नारायण महाराज आएगा तो वो खीर खाएगा। सचमुच में, सचमुच में उनके वजह से जहां गया चारों तरफ विश्व में अब हमको जान गए लोग, स्वामी जी की कृपा से। हमको जंगल अधिक नहीं काटना पड़ा, माँ बाप क्या है ये है कर्म धर्म, ये मैं भगवान की भक्ति की बातें कहता था और सभी लोग सुनते थे। तो जैसे इन लोगों ने सुना उसको ग्रहण किया, आप लोग भी हृदय से ग्रहण कीजिए। इसने क्या कहा, एक राजा थे, उनका नाम विक्रमादित्य था। उनके दरबार में एक दिन एक अघोरी, अघोरी मैंने नंगा धड़ंगा और एक नरकंकाल में खोपड़ी में शराब लेकर के पीता हुआ है। बोला यहाँ कोई बुद्धिमान आदमी है? अरे यहाँ पर नवरत्न हैं, कालिदास हैं, बराह मिहिर हैं, जो साइंटिस्ट हैं और कौन कौन बड़े नवरत्न आदमी हैं यहाँ प्रमुख हैं। तो कहने यदि कोई बुद्धिमान आदमी है तो ये खोपड़ी में पी करके और रख दिया, ये बुद्धिमान आदमी की खोपड़ी है, ये मूर्ख आदमी की खोपड़ी है। अब तो सब अवाक रह गए, कोई कुछ नहीं बतला सका। कहा ये यही बेवकूफों का ये राजसभा है, यहाँ पर कोई भी बुद्धिमान नहीं। इतने में दूर से कालिदास आ रहे थे। राजा ने कहा भाई एक आदमी को और परीक्षा का समय दे दीजिए, ये बतला देगा तो ठीक है, नहीं तो ये सब मूर्खों का ही दल है। कालिदास आए, उनसे पूछा ये बतलाओ तो ये जो खोपड़ी है मरे हुए व्यक्ति की, ये बुद्धिमान की है कि मूर्ख की? भाई ये तो बहुत साधारण बात है। उसने एक सीख ली, नारियल होता है ना, इतनी लंबी सीख पतली सी, और उसके कान में दिया और वो कान से सीधी इधर आ गई। कहा ये बेवकूफ नंबर एक था। तो कैसे? तो ये जो सुनता था इधर से निकाल देता था, ये बेवकूफ की है। यदि वो भीतर में चली जाती तो इसको विचार करके ग्रहण करता, केवल सुना और निकाल दिया, ये बेवकूफ लोगों का काम है। तो वहाँ पर मैंने ये बतलाया कि जो सुनकर उस पर विचार करके और उसको ग्रहण कर ले, ये तो बुद्धिमत्ता है। शास्त्रों को विचारों को विचार करे, कहीं इधर उधर भक्त रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों ने जो कुछ कहा है परम सत्य है, किंतु रियलाइज करना कठिन है। रियलाइज व्यक्ति के पास में जाने से वो समझा देगा, हमें उसमें प्रतिष्ठित कर देगा। तो इस तरह से बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो उपदेशों को सुनकर ग्रहण करता है। अर्जुन बुद्धिमान था, कृष्ण को भगवान मान करके उनकी बातों को परम सत्य जान करके उसको आचरण करने की चेष्टा की, और भगवान ने उसको बल दिया और बोले यदि हमारा कोई शरणागत होता है तो मैं ददामि बुद्धि योगम तं जम जैन माप, मैं उसके अंदर में बुद्धि देता हूँ। कोई कहता है प्रभु हमको बुद्धि दो, तो भगवान बुद्धि देता है, किसी सद्गुरु को भेज देता है, और नहीं तो स्वयं अवतार लेकर के या किसी रूप में उसकी वो सहायता करके भगवान की तरफ में अपने तरफ में ले जाता है। आज 9 बज गया करीब, अभी कीर्तन होगा, आज यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग भगवान का भजन करें। एक केवल शर्त है, प्याज लहसुन मदिरा मांस बीड़ी सिगरेट न लेंगे। आप जैसे बुरे अच्छे हैं उसमें कोई हर्ज की बात, थोड़ी सी श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम करें, धीरे धीरे सत्संग में आए। यहाँ पर सत्संग कुछ चालू हो रहे हैं, उसमें केवल दो एक परिवार के लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी सत्संग हो उन सत्संगों में आप लोग अधिक से संख्या में जाएं। इन विचारों को बहुत से लोग हैं, हमारे रामचंद्र जी हैं, हमारे क्या नाम अरुणश जी हैं, और लोग हैं, ये सब लोग हैं, और महिलाओं में भी योग्य लोग हैं, वो लोग भक्ति के ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमसे जो उन्होंने श्रवण किया है, हमारे गुरुवर्गों से जो उन्होंने श्रवण किया है आपको बतलाएंगे। और धीरे धीरे अपने घर का काम पूरा कीजिए, कोई इसमें हर्ज करने की जरूरत नहीं है। शाम को कुछ मिल जाए, किंतु ये बात जरूर रहे, गंदी चीज़ खाएंगे तो आपकी बुद्धि गंदी होगी, अच्छी चीज़ को नहीं ग्रहण कर सकेंगे। जो कुछ खाते हैं उसका सार भाग रक्त बन जाता है, और पेशाब और पैखाने के रूप में गंदी चीज़ निकल जाती है, और उससे कुछ दिनों के बाद में मेद मज्जा इत्यादि बनता है, जिससे आपकी बुद्धि बनती है। अंत में करीब करीब इसमें 30-35 दिन का समय लगता है एक ड्रॉप रक्त बीज बनने में, और उससे बुद्धि बनती है। तो यदि आपने बकरे का मांस खाया गया तो बकरे की बुद्धि होगी और वैसा ही स्वभाव बनेगा। यदि आपने सात्विक चीज़ों को ग्रहण किया और सात्विक, आपकी बुद्धि सात्विक होगी। तामसिक खाया तो तामसिक होगी, गंदे लोगों का भोजन किया तो गंदी बुद्धि होगी। ये एक गांव में मान लें कि ये प्लेग हो गया, तो गांव वाले उसको छोड़ क्यों देते हैं, स्थान को क्यों छोड़ते हैं, अपने घर को भी छोड़ करके भाग जाते हैं दूसरे, क्यों हैं? मर जाएंगे इसलिए ना, हैजा के कीटाणु होते हैं, यदि हैजा फैला तो फिर सावधानी से रहना चाहिए। जिसको हैजा हो गया उसके साथ में मत रहो, उसकी दवा दारू इत्यादि करो, बच करके पढ़ो, नहीं तो संक्रामक रोग है। तो उससे भी भयंकर गंदापन जो हृदय में है क्या चीज है वो गंदा? काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, और हृदय में तरह तरह के अनर्थ भरे पड़े हैं। दूसरों का हम सुख नहीं देखते, उनको दुखी देखना चाहते हैं, तो ये सब गंदी चीजें हैं। इसका बड़ा भारी संक्रमण होता है, वो जल्दी फैलता है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। इसी के लिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में बना था ये अच्छे अच्छे लोग दूसरे गंदे लोगों के साथ में भोजन न करें, तो उसको कह दिया ये तो रूढ़ी बात है। और खाते हैं कहाँ? पंच सितारा होटल में, जो जो गंदी चीजें हैं और उनकी गंदी बुद्धि होती है, और अंत में मरते हैं। इसलिए विचारों का शुद्ध होना जरूरी है भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए खान पान में भी शुद्ध होना चाहिए, अच्छे सत्संग में रहना चाहिए। हरि कीर्तन हो रहा है, आप उसमें अधिक से अधिक लोग योगदान देंगे, नहीं है तो अपने घर में ही अपने बाल बच्चों के साथ में ही मिल करके वहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं। आपको जो भगवान का नाम अच्छा लगता है वही कीजिए, यदि गुरु नहीं है, और यदि गुरु है तो उसके विचारों के अनुसार में शुद्ध रूप में भगवान का नाम कीजिए। आज यहीं तक रहे, अब थोड़ा सा कीर्तन हो जाता, आप अंत में आए हैं तो थोड़ी सी कीर्तन सुनाइए राधा कृष्ण संबंधी।